अगली सुबह शिवी के लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर आई थी। नितारा का साथ मिलने से वो काफी खुश थी। शिवी ने जल्दी उठकर सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाया। नील अभी भी सोया था जबकि शिवी और नितारा साथ नाश्ता कर रही थीं। थैंक्स नितारा, शिवी मुस्कुराकर बोली। सच कहूँ तो तुमने मेरे पापा के साथ साथ मुझे भी जीने की एक नई उम्मीद दी है। मुझे लगा मेरी लाइफ खत्म हो गई है। शिवी की आंखें डबडबा रही थीं। नितारा शिवी के पास खिसकी और उसका सहलाकर बोली, ऐसा नहीं कहते, जब एक रास्ता बंद हो जाता है तो गॉड दूसरा रास्ता भी जरूर खोल देते हैं। नील ने अपनी लाइफ कुछ अच्छा किया हो या नहीं, पर तुमसे प्यार करके उसने अपनी लाइफ का सबसे अच्छा काम किया है, शिवी ने कहा। हाँ, ये तो मैं भी मानती हूँ, नितारा हंसकर बोली। नाउ आई गेट टू गो, इवनिंग में मिलते हैं, नितारा वहां से खड़ी हुई। लेकिन आज तो वीकेंड है, तुम आज भी ऑफिस जाओगी, शिवी ने हैरानी से पूछा। हाँ, दो दिन का टाइम मिला है किसी केस पर काम करने को, मंडे को हियरिंग है, तो तुम्हारे क्या प्लान्स है? अगर तुम घर पर हो तो नील को बोल देना, मुझे रात में आने को लेट हो जाएगी, मेरा पूरा दिन बिजी रहेगा तो हो सकता है कॉल भी ना कर पाऊँ, नितारा ने जाने से पहले बोला। शिवी ने उसकी बात पर हामी भरी। उसके जाने के बाद शिवी ने सिद्धांत को कॉल किया। सिड, तुमने कोर्ट के डिसीजन को कॉलेज किया? उसकी कॉल पिक करते ही शिवी बोली, शिवी आज सैटरडे है, तुम टेंशन मत लो, मैं देख लूँगा। मेरे स्टेप ब्रदर की गर्लफ्रेंड नितारा तुमसे बात करना चाहती है। उसके हिसाब से हम अब भी पापा को बेगुनाह साबित कर सकते हैं। अगर हम ये प्रूव कर दें कि पापा ये सब किसी के दबाव में आकर कर रहे हैं तो, शिवी सिद्धांत को नितारा की कही बातें बता रही थी। तभी वो उसकी बात काटकर बीच में बोला, तुम्हें क्या लगता है शिवी, मैंने ये सब ट्राई नहीं किया होगा? उसी के बाद तुम्हारे पापा का ब्रेन मैपिंग टेस्ट हुआ था। उस टेस्ट के जरिए ये साबित हो चुका है कि तुम्हारे पापा मानसिक रूप से बिल्कुल ठीक हैं। तो क्या कोई रास्ता नहीं बचा, शिवी ने उदास होकर पूछा। अब सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है कि वो अपने मुंह से खुद सच एक्सेप्ट करें। जब तक वो सच्चाई नहीं बताएंगे, तब तक कानून की नज़रों में वो एक गुनाहगार हैं। मैं मंडे को कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज कर दूंगा और हाई कोर्ट में अपील भी। सारी प्रोसेस होने में लगभग 3 से 4 महीने का टाइम लग जाएगा। 3 से 4 महीने? ये तो बहुत ज़्यादा टाइम है, शिवी ने कहा। हाँ, क्योंकि सभी डॉक्यूमेंट्स और सबूतों की फिर से जाँच होगी। हाईकोर्ट में केस एक नए सिरे से शुरू होगा, इसलिए इतना टाइम लग जाता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कुछ भी करके इस बार तुम्हें इंडिया आना होगा ताकि तुम अपने पापा को समझा सको। शिवी को सब कुछ समझाने के बाद सिद्धांत ने कॉल कट कर दिया। वहीं ऑफिस में उसके पापा मौजूद थे। जब विकास शुक्ला ने उसके मुंह से हाईकोर्ट में अपील लगाने की बात सुनी तो वो तेज कदमों से चलते हुए सिद्धांत के पास आए। दिस इज टोटली रिडिक्युलस, वो गुस्से में बोले। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, मुझे लगा था कोर्ट के डिसीजन के बाद तुम समझ जाओगे, लेकिन नहीं, उस लड़की की बातों में आकर तुम हाईकोर्ट पर अपील करने जा रहे हो। कभी सोचा भी है इन सब से तुम्हारी कितनी बेइज्जती होगी? तुम्हारा करियर तक दांव पर लग सकता है। मुझे उसकी परवाह नहीं है पापा, मैं अपनी आखिरी कोशिश करना चाहता हूँ, सिद्धांत ने शांति से जवाब दिया। तुम्हें कोई परवाह नहीं है, लेकिन मुझे है। कोर्ट में हर कोई बात कर रहा था, विकास शुक्ला का बेटा एक अपराधी के लिए केस लड़ रहा है, एक ऐसा अपराधी जो वाकई गुनहगार है, विकास शुक्ला ने गुस्से में कहा। उन दोनों के बीच की गहमागहमी बढ़ती जा रही थी। सिद्धांत उनकी सुनने को तैयार नहीं था, जबकि विकास उसे हाईकोर्ट में अपील लगाने से रोकना चाहते थे। उन दोनों की बहस के बीच से विकास शुक्ला का बड़ा बेटा लक्षित आया। डैड, सिड, ये आप दोनों क्या कर रहे हैं? डैड, आपने ही डिसाइड किया था ना हम कोर्टरूम की कोई भी बहस या केस को अपने रिश्ते पर हावी नहीं होने देंगे। सिड इतना समझदार है कि वो अपना सही गलत समझ सकता है, लक्षित ने विकास जी को समझाने की कोशिश की। तुम भी अपने भाई का पक्ष ले रहे हो, क्या तुम्हें भी यही लगता है शिवी अय्यर बेगुनाह है? विकास जी लक्षित की तरफ देखकर बोले। लक्षित कश्मकश में फंस गया, वो किसी एक का साथ देने की स्थिति में नहीं था। उसने उनकी बात का जवाब देते हुए कहा, अब इसमें मैं कहाँ से आ गया? आप दोनों हर बार अपनी बहस के बीच मुझे क्यों ले आते हैं? अगर इसे लगता है शिवी अय्यर बेगुनाह है तो इसे उसका केस लड़ने दीजिए ना। आपको वो गुनहगार लगता है तो आप उसका गुनाह साबित कीजिए, मैं कोई जज तो हूँ नहीं जो आप मुझसे पूछ रहे हैं। लक्षित को बात को टालने का इससे अच्छा बहाना नहीं मिला, वो भी एक लॉयर था और बातों को घुमाने का हुनर उसकी बखूबी था। उसने पूरी बात को उन दोनों पर डाल दिया और अपनी बात कहकर वहां से चला गया। विकास शुक्ला ने भी सिद्धांत से आगे कुछ नहीं कहा और वहां से अपने केबिन में चले गए। उनके समझाने के बावजूद सिद्धांत शिवी अय्यर के केस को हाईकोर्ट में ले जाने की प्रोसेस को करने में लग गया। शाम के समय शिवी अपने लिए थोड़ा टाइम निकालकर शॉपिंग करने के लिए गई थी। उसके साथ उसकी दोस्त जिया भी थी। शिवी ध्वनि के कहे मुताबिक कुछ सामान ले रही थी ताकि ऑफिस में खुद को आर्य से छुपा सके। रास्ते में शिवी ने उसे ऑफिस में जो भी हुआ उसके बारे में सब कुछ बता दिया था। उसे सुनने के बाद जिया ने कहा, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा तू उसके सामने छुप कर रही है। वैसे तेरे काम ही ऐसे हैं, तू चाहकर भी उसके सामने नहीं जा सकती। कभी कभी लगता है कि तू उसी की साइड है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसकी वजह से मैं उसके सामने नहीं आ सकती। ये सब ध्वनि मैम की वजह से हुआ है,
उसने मुझे बुरी तरह डरा दिया कि उसका मूड खराब है और मैं घबरा गई। शिवी ने मुंह बनाकर कहा, तुमने बेचारे की अच्छी खासी डील कैंसिल करवाने की कोशिश की, उससे एक टेबल के लिए झगड़ा किया और उसके बाद उसने जब सब ठीक किया तब भी गलती उसकी निकाल रही है। वो इतना भी बुरा नहीं है जितना तू समझ रही है, जिया बोली। उसकी बात सुनकर शिवी को कल का दिन याद आ गया जब वो बाथरूम में बैठकर रो रही थी और आर्या ने उससे बात की थी। उसकी वजह से उसका मूड भी बेहतर हुआ था। हाँ, शायद तू ठीक कह रही है, वो इतना भी बुरा नहीं है। बस हम दोनों की मुलाकात अच्छे हालातों में नहीं हुई और यही वजह है कि मुझे उससे छुपाना पड़ रहा है। चल अब उसके बारे में बातें करना बंद करो और मेरी हेल्प कर, शिवी ने जवाब दिया। हाँ हाँ ठीक है, सही कहा है किसी ने, इंसान अपनी एक गलती को छुपाने के लिए 100 गलतियां भी कर जाता है और वही तू कर रही है, जिया ने कहा। उसके ऐसा कहने पर शिवी ने उसकी तरफ घूर कर देखा तो जिया ने झट से अपने होठों पर उंगली रख दी। दोनों बातें करते हुए एक मॉल में गई जहां सबसे पहले वो एक शू स्टोर में आई। शिवी वहां हाई हील्स के शूज ट्राई कर रही थी। उसे पहनकर उसे काफी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था जबकि जिया उसे ऐसे देखकर हंस रही थी। जहां तक मुझे याद है तुमने कभी 2 इंच से ऊंचे जूते नहीं पहने और अब यहां तू पूरे 5 इंच की हील ले रही है। सही है, लड़कों की अटेंशन पाने के लिए अक्सर लड़कियों को ये करते देखा है, पर तू दुनिया की पहली लड़की है जो एक हैंडसम लड़के से छिपने के लिए ये सब कर रही है। हद है यार, मैं एक ऐसे इंसान के लिए ये सब कर रही हूँ जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ध्वनि मैम को ये सब बोलने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए था और सब गलती मेरी ही है, मैं क्यों खुद को छुपा रही हूँ। मुझे उसे जाकर बता देना चाहिए कि मैं ही शिवनंदिनी अय्यर हूँ।
हाँ तो जाओ, जाकर बता दो कि तुम वही शिवी हो जिसने उससे बहस की थी। वैसे तुमने उसे लड़ाई करते वक्त उसे कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बोल दिया था, जिया ने पूछा। कंजी आंखों वाले लोग झगड़ालू टाइप के होते हैं और बदतमीज भी। तुम्हारे पापा का रेस्टोरेंट है क्या जो यहाँ आकर अपनी दादागिरी झाड़ रहे हो? होंगे तुम कोई अमीरजादे टाइप, लेकिन ये रेस्टोरेंट तुम्हारा नहीं है, मिस्टर हुएवर ओब्रॉय। शिवी ने एक साथ में वो सब बोल दिया जो उसने पहली मुलाकात में लड़ाई के दौरान आर्य को कहा था। बस इतना ही, ये तुम्हें बस लगता है? जिया ने आंखें दिखाकर कहा। उसकी आंखें सच में खूबसूरत है और तुमने उसकी आंखों के कलर की वजह से उसे झगड़ालू और बदतमीज कहा। देखो, तुम सीधे सीधे उसके पापा पर गई हो। कोई तुमसे लड़ाई करते वक्त तुम्हारे पापा के बारे में बोलो तो तुम्हें भी बुरा लगेगा, और वो अमीर है तो इसमें उसकी क्या गलती है? उसने अपनी कंपनी खुद के दम पर खड़ी की है, इस बात का घमंड करने का उसे हक है। हाँ ठीक है, मैंने हार मान ली। बस 6 महीने की बात है, उसके बाद में हम दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे, और इन 6 महीनों में उसे कभी पता नहीं चल पाएगा कि उसके ऑफिस में मैं काम कर रही हूँ। चलो बहुत हुआ, मेरी हेल्प कर, शिवी ने बात को टाल दिया और वहां रखे जूते ट्राई करने लगी। शिवी को वो सब करते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, फिर भी उसने 2-3 पैर हाई हील्स शूज लिए। उसके बाद उसने अपने लिए एक ही तरह के 2-3 हेयर विक्स ली जो छोटे बालों की थी। शिवी उन्हें लगाकर ट्राई कर रही थी। उसने खुद को शीशे में देखकर कहा, इसमें तो मैं बिल्कुल जोकर जैसी लग रही हूँ। उसने खुद को देखकर मुंह बनाया। वैसे इतने भी बुरे नहीं लग रहे, बस तू इन्हें अच्छे से मेंटेन करना सीख लेना, वरना ऐसा ना हो सबके सामने तुम्हारी पोल खुल जाए, जिया ने हंसकर कहा। सारी शॉपिंग करने के बाद वो दोनों कंट्रीसाइड में घूमने के लिए चली गई। वहां बहुत शांति होती थी जिसकी शिवी को इस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसके पापा की सजा होने के बाद से ही शिवी का मन काफी अशांत था। वहां घूमते हुए उनकी नजर इंडियाना रेस्टोरेंट पर गई। उसे देखते ही जिया ने कहा, चलना अंदर चलते हैं, यहाँ का खाना बिल्कुल ऑथेंटिक इंडियन टच देता है। मुझे सच में ये जगह बहुत पसंद आई थी, लेकिन वीकेंड होने की वजह से अगर आर्या सिंह ओब्रॉय यहाँ आ गया तो। शिवी अंदर जाने से हिचकिचा रही थी। तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू यहीं रुक, मैं अंदर से खाना पैक करवा कर लाती हूँ, जिया उसे वहीं छोड़कर अंदर जाने लगी। सारे शॉपिंग बैग्स उसी के पास थे। शिवी उसके आने का इंतजार करते हुए टहलती हुई पास के गार्डन में आ गई। वो वहां साइड में वॉक कर रही थी। 2.5 साल पहले जो भी हुआ वो काफी अनफॉर्चुनेट था। जो भी हुआ उससे हमारी लाइफ पूरी तरह बदल गई। मम्मा पापा से कितना प्यार करती थी, और अब उनका सारा प्यार और अटेंशन मिस्टर वॉटसन और नील के लिए ही है। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, पापा सब कुछ अपने सिर क्यों ले रहे हैं? क्या उन्हें ऐसा करने के लिए कोई ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा? अपने उधेड़ बुन में खोई हुई शिवी खुद से बात करते हुए गार्डन से बाहर निकल गई, और उसे ख्याल भी नहीं रहा। वो अब गार्डन के बजाय रोड पर चल रही थी, और सामने से एक गाड़ी तेज गति में चलती हुई आ रही थी। जल्द ही वो गाड़ी शिवी के पास थी और शिवी उस कार से टकरा गई। गाड़ी के ड्राइवर ने एंड टाइम पर ब्रेक लगा लिया, लेकिन फिर भी शिवी रोड पर गिरी थी और उसके हाथ पर चोट लगने की वजह से खून निकल रहा था।